कोई हमसे पूछे कि पहली ढाल लिखने का मकसद क्या है, आचार्यों का या पंडित जी ने लिखी तो उसका क्या प्रयोजन रहा होगा पहली ढाल लिखने का, तो आप क्या आंसर देंगे?
डरा देना
है,
सबको सरकार से डरा देना,
ऐसा एक आंसर हो गया। और
उसका आंसर ये, जब तक जो दुख आप सहन कर रहे हो उनका जब तक आपको नहीं पता लगेगा तब तक आप उनसे डर के नहीं ले सकते।
ठीक,
क्या क्या दुख एक जीव संसार में घूम कर प्राप्त कर रहा है
उसका उससे उसको परिचय करवा दिया, ये बताने का हो गया। और दो चीजें हो गई, और कोई कैसे एक्सप्लेन करेंगे? पहली ढाल में चारों गतियों का वर्णन है, चारों गतियों के विशेष रूप से दुख का वर्णन है, ठीक है? तो सिर्फ प्रयोजन क्या है इस दुख को बताने का? तो एक तो आपका कहना है कि एक प्रयोजन ये है कि हम उनको रियलाइज करवा दें, या हम खुद इस चीज को स्वीकार कर लें कि हाँ चारों गतियों में सिवाय दुख के और कुछ नहीं मिलता। चलिएगा, ये हमने स्वीकार कर लिया, तो इससे क्या सॉल्व हुआ, इससे हमारा क्या प्रयोजन सॉल्व हुआ? या कि हमने छोड़ने का मन बन जाएगा क्या? चारों गतियां छोड़ देंगे तो क्या, कैसे कैसे छोड़ेंगे? और थोड़ा सोचिए,
इसमें तो ये रास्ता नहीं बताया, उसमें ये बताया पहले ढाल में कि ये दुख संसार में एक जीव होता है,
हाँ।
और जो इंद्रिय सुख उसको मिलते हैं वो किसी को सुख मानता है, जो एक्चुअल सुख है वो नहीं प्राप्त कर पाता।
पहली
ढाल का इस ढाल में तो नहीं बताया, लेकिन आगे हम बताएंगे किस तरीके से वो
पहली ढाल में सिर्फ हमें परिचय करवा दिया दुख से, चारों गतियों के दुख से परिचय करवाए, सिर्फ इतना ही या और कुछ?
उससे खुद में लगे वो आगे सुख कहाँ है,
एक जीवी को ये हो सकता है क्या? एक जीवी को बहुत उन्नतता की वितरागता पाना है, कोई चारों में बिना जाकर भी पा सकता है क्या? कोई भी जीव ऐसा है
चारों गतियों में जाना पड़ेगा उससे, चारों गतियों में कोई भी अगर गतियों से पार हुआ है तो उसे चारों गतियों में जाना पड़ा है। छह डाला बहुत लोगों ने पढ़ी होगी भैया, और भी पहले, और बहुत प्रशंसनीय पुस्तक मानी जाती है। मुझे बताइए कि पहली ढाल का प्रयोजन क्या है? क्या सिर्फ इतना ही प्रयोजन है कि मुझे दुख से परिचय करवाया जाए, या और कुछ भी है? ये तो मुझे समझ में आ गया कि दुख से परिचय करवाया गया है। और आपका आपका क्या कहना है? आपने पहले क्या कहा था? एक
संसार से भय
उत्पन्न कराना, और आपका कहना है कि दुख इतना तो है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये है, इसके अलावा और क्या चीज है? कुछ और है क्या इसमें?
संसार जन्म लगवा,
ये तो इसमें कहीं लिखा ही नहीं,
समझ लीजिए मैं समझ।
ये ग्रुप डिस्कशन है,
हमने
पढ़ना आसान है।
समस्त जीवियों का कल्याण करना चाहेंगे तब हमको जो दुखी रहते हैं दूसरे कंकड़ों का स्थिति में जीवी रह सकता है उसका जानकारी तो होना पड़ता है, तभी तो जब दूसरों का दुख हमको मालूम नहीं है हम निवारण नहीं कर सकते।
ये भी ठीक है,
वो दूसरे उन्होंने हमको उसका परिचय देते होंगे।
और मेन अभी तक अपन नहीं पहुंच पा रहे हैं कि आखिर
जब तक चारों गतियों के दुखों को नहीं जानेंगे तब तक हम उनसे उबर नहीं सकते, इसलिए उनको दुखों का वर्णन किया है।
अच्छी बात, तो क्या अकेले दुखों को जान करके कोई बचने बच जाएगा? थक गए या कि और थक गए तुम्हें बताते हैं। वह सीधा सीधा सा था, है ना? ये भी सही है कि हमें संसार से भयभीत करना चाह रहे हैं और हमें चारों गतियों के दुख बताना चाह रहे हैं, ये सब उनका मकसद है, लेकिन मेन पर्पस क्या है? कोई भी जीव इन चारों गतियों में क्यों भ्रमण करता है? वो अपनी अज्ञानता से, मोह महामद पियो अनादि भूल आपको भरमत बन। एक लाइन में पूरी छह ढाला की पहली ढाल का हो गया, चारों गतियों में सब जीव रहते हैं, सम्यक दृष्टि दुखी नहीं है, जो रत्नत्रय से युक्त है वो दुखी नहीं है, जो अनंत भगवान है वे भी इस संसार में हैं, वे भी दुखी नहीं है, वे भी चारों गतियों में घूम के आए हैं। मैं इन चारों गतियों में घूमता हूँ, दुख पाता हूँ, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? गतियाँ जिम्मेदार है या कि मेरी अज्ञानता जिम्मेदार है? ये चारों गतियाँ दुखमय है ऐसा कहने का आशय क्या है? ये चारों गतियां मुझे दुख देती हैं, तो क्या गतियां दुख देती हैं या मेरी इन गति में अज्ञानता दुख देती है? मुझे ये क्लियर करना, ये मुझे क्लियर कर रहे हैं। इन चारों गतियों के दुख दिखा करके मुझे इस तरफ ले जाना चाह रहे हैं कि देखो ये दुख हमने अपनी अज्ञानता की वजह से भोगे हैं। संसार के मायने भ्रमण हैं। आवागमन जहाँ पर हो उसी का नाम संसार, संसरति इति संसारा। जिसमें जन्म मरण का दुख लगा हुआ हो वो संसार है। और इस संसार में भ्रमण का कारण क्या है ये बता देना चाह रहे हैं कि मोह महामत, ये मोह इस संसार भ्रमण का कारण है। तो पहला प्रयोजन ये हुआ कि मुझे संसार भ्रमण का दिग्दर्शन करा रहे हैं कि मैं इस तरह संसार में भ्रमण करता हूँ, और इतना ही नहीं मैं अपनी अज्ञानता की वजह से संसार में भ्रमण कर रहा हूँ। यानी अब हमारी अप्रोच बन गई कि अगर हम उस अज्ञानता को हटा दें तो संसार भ्रमण से मुक्त हो सकते हैं, वरना तो चारों गतियां मुझे भ्रमाती हैं। तो ठीक है, अब मैं चारों गतियां बिना भ्रमाती तो भ्रमण करूंगा, फिर उपाय क्या जानने की आवश्यकता नहीं। उपाय मेरे हाथ में है क्योंकि मैंने इनमें भ्रमण करने का उपाय करा है। वो अज्ञानता मेरा उपाय है इसमें भ्रमण करने का, इसलिए मैं उस अज्ञानता को अगर छोड़ दूं तो फिर मैं इन चारों गतियों से बच सकता हूँ। यहाँ अप्रोच ये है, मुझे ऐसा लगा कि छह ढाला की पहली ढाल मैंने पहली बार पढ़ाई है, ये मान के चलिए आप, फिर भी छह ढाला की ढाल पढ़ाई नहीं, मैं छह ढाले नहीं पढ़ाई और पहली ढाल मैंने कभी पढ़ता नहीं हूँ कि क्या आवश्यकता है इसकी। मुझे मालूम है कि मैंने ये दुख भोगे हैं, इन दुखों से मुझे बचने का उपाय तो आगे दिया हुआ है, मुझे दुखों को फिर से रिवाइज करने की क्या आवश्यकता? नहीं, उन दुखों को रिवाइज करते समय मुझे ये फील होना चाहिए कि मेरी अपनी मिस्टेक, मुझे दुख सुख देने वाला कोई और नहीं था, मेरी अपनी मिस्टेक से मैंने यहाँ पर दुख पाया है और मैं चाहूँ तो अपनी वो मिस्टेक ठीक कर लूँ तो फिर मैं बच सकता हूँ। इस चारों गतियों से मुझे चारों गतियां जरा भी भयभीत नहीं करेंगी, मैं किसी भी गति में रहूं पर मैं अगर ज्ञान से युक्त हूं तो मुझे वो गति भटका नहीं पाएगी, मैं उस गति से पार हो जाऊं। और आगे जाकर के दूसरी ढाल में हमें ये बता रहे हैं कि जो तुमने जाना कि हमारा मोह, वो मोह कितने प्रकार का है और किस तरह से वो अपना काम करता है, कॉज क्या है? जो हमने मोह के बारे में जाना कि एक लाइन में जान लिया कि मोह महामती अनादि, अब वो मोह किस प्रकार का है? एक जो बाई बर्थ हमें चला आ रहा है, बाई बर्थ क्या, फ्रॉम वेरी बिगनिंग, जब से हमने अपने जीवन की शुरुआत करी है तब से वो मोह भी हमारे साथ चला आ रहा है। वो तो अग्रहित है, हमें किसी ने सिखाया नहीं, वो निसर्गत है। वो चाहे श्रद्धा हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे हमारा आचरण हो, तीनों तो होते हैं व्यक्ति में। उसका कहीं विश्वास होता है, कुछ चीजें वो जानता है और कुछ आचरण करता है, और तीनों ही मिथ्या हो गए। ना हमारा दृष्टिकोण समीचीन रहा, ना हमारा ज्ञान समीचीन रहा, ना हमारा आचरण समीचीन रहा। इस असमीचीनता का कोई मेजर कॉज है तो कितनी हमारी हमेशा की भूल। और दूसरा है ग्रहित, जो मैंने यहाँ संसार में आकर देखा देखी और किसी को भी देवता मान लिया, किसी को भी गुरु मान लिया, उसमें मेरी अज्ञानता ही कारण थी। किसी ने मुझे बाई फोर्स इन चीजों को मानने के लिए मजबूर नहीं किया है, मेरी अपनी अज्ञानता से मैंने इन चीजों को ठीक मान लिया है। गलत को ठीक मान लेना यही तो भ्रम है। एक तो गलत को ठीक मानते हैं हम हमेशा से, और एक गलत को ठीक मानते हैं किसी निमित्त से, बाह्य कारण के मिलने पर। बस दोनों प्रकार की अपने फॉल्ट्स के बारे में मैं तो ये सोचता हूँ कि अब हमें ये बता रहे हैं वो दूसरी ढाल में डिटेल में कि हमारे, हमने जो कहा कि हमारा फॉल्ट है मोह, वो मोह क्या चीज है? उस मोह को दूसरी ढाल में, तो सबसे पहले अपन ने दूसरी ढाल की शुरुआत में क्या पढ़ा था कि जो हमारा मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या आचरण है वही इस संसार में दुख का कारण है और भ्रमण का कारण है। भ्रमण का कारण है सम्यक दर्शन, वो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या आचरण, और भ्रमण ही दुख का कारण है। तो इनडायरेक्टली अगर कहें तो दुख का कारण मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है, एक्चुअली तो दुख होता है भ्रमण का। और भ्रमण का कारण क्या है? तो ये माने फॉल्स परसेप्शन या कि फॉल्स फेथ, फॉल्स कंडक्ट, ये हमारा जो असमीचीन आचरण है, ज्ञान है और दृष्टिकोण है, वही भ्रमण का कारण है और वही दुख का कारण है। ये एक लाइन में बता दिया, इसलिए ताको इनको तजिए सुजान। अब अगर इनको ठीक ठीक जान लोगे तो छोड़ना आसान हो जाए। जानने और छोड़ने में अंतर नहीं है, अपन लोगों ने अंतर बना लिया है। कि पहले जानते हैं फिर छोड़ते हैं। कहते हैं दोनों चीजें साइमल्टेनियस हैं, जिसने वास्तव में जान लिया वो तुरंत छोड़ दे। और इसका बहुत सीधा उदाहरण है कि जानना मतलब फील करना, ये भी अपन पहले तय कर लें कि जहां भी हम जानना शब्द कहेंगे वहां पर फील करने से है, क्योंकि हमारे आगम में बहुत स्पष्ट लिखा है कि जानाति संचेत्यति अनुभवति इति वा। जहां हम कहें कि जानता है वहां पर समझना की चेतना से वो रियलाइज कर रहा है, अनुभव कर रहा है, ये अर्थ उसका है। तो जैसे कि हाथ में गर्म दूध आ गया है, गर्म चाय आ गई है, तो फिर जब हम उसको फील कर रहे हैं तो क्या हम छोड़ने के लिए पूछते हैं किसी से कि कहां छोड़े कब छोड़े? नहीं, हम तो उसी क्षण छोड़ देते, जैसे ही हमें अनुभव हुआ गलत तो फिर हमने छोड़ दिया। तो ये कह रहे हैं कि इनको तजिए सुजान, अच्छी तरह से इनको जान लोगे तो छोड़ना आसान हो जाएगा। जिन क्षणों में छोड़ा है समझना कि आपने जान लिया है, और आपने जान लिया और छोड़ा नहीं इसका मतलब है जानने पर प्रश्न चिन्ह लगा है। अभी आपने ठीक ठीक जाना नहीं, अगर जान लिया होता तो आप छोड़ चुके होते। ये फर्क है नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग में। ज्ञान प्राप्त कर लेना, नॉलेज हो जाना अलग चीज है, और अंडरस्टैंडिंग समझ आ जाना अलग चीज है। समझ जैसे ही आती है, छोटे से बेटे के हाथ में गर्म भी हो जाए तो उसको समझ नहीं आता कि क्या करें, पूरा हाथ जल रहा है, रो रहा है, लेकिन छोड़ता नहीं वो, क्योंकि जानता नहीं। सांप को पकड़ लेता है, काट देगा, इस तरह का कोई उसको अनुभव ही नहीं, तो वो पकड़े रहता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिसे मालूम पड़ जाए तो वो तो रस्सी देख करके भी सांप का भ्रम कर लेगा तो भी छोड़ देगा उसको। जानकारी जो है वो हमें छोड़ने के लिए प्रेरित कर देती है, या उसी क्षण हम छोड़ देते हैं। इसलिए ये
सारे लिखा तम्मा पच्चक खाम राणम नीमा,
राणम नीमा हवेद, प्रत्याख्यान और ज्ञान, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, ज्ञान ही संवर है, ज्ञान ही निद्रा है, सब वही चीज। तो ये दो शब्द बड़े बढ़िया मुझे लगे, दाते इनको तजिए सुजान, इनको छोड़िएगा लेकिन भली प्रकार से जान करके। अगर आप जान लेंगे तो आपको छोड़ना आसान होगा, वरना आप छोड़ देंगे तो फिर भी आपके मन में उन चीजों के लिए लालसा बनी रहेगी। इसलिए जितनी विरक्ति उतना त्याग। कई लोग त्याग करने के बाद विरक्त होते हैं, कई लोग विरक्त होने के बाद त्याग करते हैं, दोनों चीजें। अपन पहले शुरुआत जो अपन कमजोर लोग हैं इसलिए अपन पहले त्याग कर देते हैं, मन में भले ही बना रहता कि खा लेते लेकिन नहीं, त्याग कर देते। फिर उसके बाद जो धीरे धीरे कि अब ठीक है त्याग कर दिया है, अब विरक्ति भी ले लो उसके, अब क्या मतलब, तो बाद को विरक्ति आती है। और कई लोग विरक्त हो जाते हैं तो फिर छोड़ देते हैं। छोड़ क्या देते हैं, उनको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो तो छूट ही जाता है। जो विरक्त हो गया वो चीज छूट गई, वो उसके पास रहेगी भी तब भी वो उसका उपयोग नहीं करेगा। ये विरक्ति ही त्याग है, लेकिन त्याग के साथ विरक्ति होगी ऐसा कोई नियम नहीं है। मुश्किल जो है रहेगा भीतर नहीं, अब रहने दें, यहीं से कर लेते हैं फिर डिस्टर्ब हो। तो मेरी अपनी जो विपरीत मान्यता है या विपरीत श्रद्धा है वो क्या है, अगर ये तय हो गया है कि मेरे अपने दृष्टिकोण के गलत होने की वजह से मैं भ्रमण कर रहा हूं, तो फिर मैं ये जानूं कि मेरा दृष्टिकोण कहां कहां, मेरी मान्यता कहां कहां गड़बड़ा गई है। तो जो सात प्रयोजन भूत तत्व हैं उनके बारे में हमारी मान्यता या हमारी धारणा लगता है कुछ गलत है, हमने उनको ठीक ठीक समझा नहीं। एक तो सात तत्व ही नहीं समझे, और अगर सात तत्व मालूम भी पड़ गए हैं तो उनके बारे में जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं है। तो वो क्लियर करते हैं कि पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो ताकि दृष्टि ठीक हो जाए। जो चीज जैसी है उसे वैसा, उसके स्वरूप को वैसा श्रद्धान करना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। सात तत्वों का जो स्वरूप है उसको वैसा ही श्रद्धान करना, यही सम्यक दर्शन। तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शन, ये परिभाषा उसकी है। या कि सच्चे देवगुरु शास्त्र पर श्रद्धा करना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। या अपने आत्मा में रुचि होने का नाम सम्यक दर्शन है, जिस प्रकार भी कहना हो। यहाँ पर अपने लिए बताया है मुख्य रूप से, अगर कोई कहे कि छैठाला की अपेक्षा से सम्यक दर्शन की परिभाषा क्या है और मिथ्या दर्शन की, तो इसमें परिभाषा यही बता रहे हैं कि सात तत्वों का ठीक ठीक स्वरूप नहीं समझना यही मिथ्या दर्शन है, और ठीक ठीक स्वरूप समझ के उस पर श्रद्धा करना ये सम्यक दर्शन है। आगे जाकर के और भी कहेंगे सम्यक दर्शन की परिभाषा, पर द्रव्यन से भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है। लेकिन अभी यहाँ जब मिथ्यात्व की बात कर रहे हैं तब मिथ्यात्व की परिभाषा क्या बनाएंगे, सात तत्वों का जैसा स्वरूप है उससे विपरीत पर श्रद्धान कर लेना, यही जो है मिथ्या दर्शन है। जैसे चेतन का क्या स्वरूप है, उपयोग, कॉन्सियस इज द क्वालिटी ऑफ सब्सटेंस, चेतना या जीव या सोल, तो ये कॉन्शियस जो है उसको हम नहीं समझ पाते हैं और शरीर को ही हम जीव मान लेते हैं, और शरीर को जीव मान लेते हैं तो कितनी सारी चीजें हमारे उसमें आना शुरू होती हैं। हम शरीर को लेकर के ही संकल्प विकल्प करते हैं, मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ, जबकि मैं सुखी दुखी अपने परिणामों से होता हूँ, पर शरीर पर सुख दुख आने से मैं उसको अपना मानता हूँ, इसलिए मैं सुखी दुखी मान लेता हूँ। मेरे जो है मैं रंग राव, ये सब अपन एक बार रिवाइज कर रहे हैं कि ये सब चीजें हम ऐसे भ्रम में हम पड़ जाते हैं। संकल्प विकल्प, तो संकल्प की परिभाषा मैंने अभी बताई कि किसे कहेंगे संकल्प, हाँ ये मेरा है मैं इसका स्वामी हूँ, इस तरह का जो भाव है उसको बोलते संकल्प, और मैं सुखी दुखी हूँ इस प्रकार का जो हर्ष विषाद का भाव है उसको बोलते विकल्प। तो ये वही तो कह रहे हैं, मैं सुखी दुखी, मैं ऐसा हूँ मैं ऐसा हूँ, इस तरह हर्ष विषाद करता है और चीजों में अपना स्वामित्व रोक देता है। ये हमारी जीव तत्व के बारे में भूल हो गई, और यही भूल हमारी अजीव तत्व के बारे में हो गई। जीव को अजीव मान बैठना और अजीव को जीव मान बैठना, एक दूसरे को हमने गटमट कर दिया, एक दूसरे के स्वरूप को अन्यथा समझ लिया, ये हमारी मान्यता गड़बड़ हो गई। तो एक ये है, और जीव का स्वरूप और कैसा है, कोई नेगेटिव पूछे, पॉजिटिव तो हो गया, दो अपने यहाँ दृष्टिकोण, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, कैसा है और कैसा नहीं है। तो कहते कैसा है, चेतन को है उपयोग रूप विनमूरत चिन्मूरत अपने अनु, लेकिन पुद्गल नव अर्धर्म अधर्म काल इनसे न्यारी है। एक तरफ कह रहे हैं कि ऐसा है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। जैसे पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल द्रव्य हैं, वैसा जीव का स्वरूप नहीं है। जीव का स्वरूप तो चेतनात्मक है, उपयोगवान है, चिन्मूरत अर्थात चैतन्य मूर्ति है, और बिनमूरत देखा जाए तो उसका अपना कोई आदर कलर ये स्पर्श रूप रस गंध इस तरह की कोई चीज उसके अंदर नहीं है ऐसा। फिर इसके बाद दूसरा कौन सा, तीसरे नंबर कौन सा आता है तत्व, आश्रव। आश्रव के बारे में हम क्या गलती करते हैं, रागादि प्रकट ये दुख दैन तिन ही को सेवत गिन। जिन जिन चीजों से मेरा आश्रव होता है कर्मों का, उन चीजों को मैं करता हूँ, ये मेरी मान्यता ही गलत है। मैं राग आदि को ही अच्छा मान लेता हूँ, जबकि राग द्वेष करने से ही मेरे आश्रव होता। भावाश्रव की परिभाषा क्या है, राग और द्वेष ही भावाश्रव के कारण है। द्रव्याश्रव तो कर्म की वर्गणाएं आकर के हमारे आत्मा से चिपकती हैं, वो कब चिपकती हैं, जब हम राग द्वेष करते हैं। तो कहते हैं राग द्वेष आदि हम सामने सामने देखते हैं कि ये हमें दुख देने वाले हैं, इन्हीं के द्वारा संसार बढ़ता है, फिर भी हम उन्हीं को सेवन करते रहते हैं, ये हमारा दूसरा आश्रव तत्व के बारे में ये हमारी भूल है। इतना अपन कल मेरे ख्याल से पढ़ चुके थे। अब शुभ अशुभ बंध के फल मझार रति अरति करें निज पद विसार। इतने छोटी सी एक लाइन में सारी बात। बंध किसे कहते हैं, नहीं बंध किसे कहते हैं,
कर्म जो आश्रव के द्वारा शरीर में प्रवेश किए हैं वो आत्मा के साथ, जब
आत्मा और कर्मों का एक क्षेत्रावगाह संबंध या एक मेघ हो जाना दूध और पानी की तरह, उसे कहते हैं बंध। परिभाषा अपने को ऐसी थोड़ी सी बनाना पड़ेगी, आत्मा और कर्मों का एक मेक हो जाना यही है यूनियन या इंटरमिगलिंग।
इंटरमिगलिंग
यूनियन में भी थोड़ा इंटरमिगलिंग ज्यादा फर्क
पानी की जैसा,
हाँ, इंटरमिगल कर गए, एक दूसरे से सेपरेट नजर नहीं आते हैं, कोई तीसरी चीज ही बन गई है बाउंडेज होने से। यूनियन में तो ये है कि दो चीजें एक साथ मिल गई हैं, तीसरी चीज कोई उत्पन्न नहीं हुई, इसलिए इंटरमिगलिंग ज्यादा ठीक। एक क्षेत्रावगाह संबंध या एक मेक ऐसा हो जाना दूध पानी की तरह। अब और जैसा ये तो हो गया बंद, वो बंद दो प्रकार का होता है, शुभ भी होता है और अशुभ भी होता है। इन शुभ और अशुभ जब मैं बंद कर लेता हूँ तब उसका फल मिलता है मुझे। उस फल में जब शुभ फल मिलता है तब मैं हर्षित होता हूँ, और अशुभ मिलता है तब मैं दुखी होता हूँ। ये भी मेरी मान्यता गड़बड़ है, ये बंध तत्व के बारे में मेरी मान्यता है कि जो शुभ अशुभ बंध के फल मझार रति अरति करें निज पद। उस समय मुझे समता रखनी चाहिए थी, तो मैं उस समय समता न रख करके हर्ष विषाद कर लेता हूँ, तो नए बंध के लिए एक प्रक्रिया शुरू हो। पुराने कर्म जो मुझे बंधे हैं वे उदय में आते हैं और अपना शुभ अशुभ फल देते हैं, और मैं उन्हीं के द्वारा नए बंध की प्रक्रिया को कंटिन्यू कर लेता हूँ, ये मेरी बंध तत्व के बारे में भूल है। और निज पद विसार मझार मतलब बीच शुभ अशुभ बंध के फल मझार अर्थात फल में फल के बीच फल मिलने पर रति मतलब होता है राग और अरति मतलब द्वेष मैं राग द्वेष कर लेता हूँ अरति का मतलब
उस फल बंध के जब फल आते हैं तो उनसे नए राग द्वेष कर लेता
हूँ हाँ नया राग द्वेष करता हूँ और मैं नए बंध की प्रक्रिया शुरू कर देता हूँ या तो ये कह दो
निज पद विसार
विसार मतलब भूल करके बुंदेलखंडी शब्द विसार भैया विसर गए मतलब भूल गए हाँ बीती ताही विसार तो क्या हुआ बंध किसे कहते हैं आत्मा और कर्म का एक में या एक क्षेत्रावगाह संबंध हो जाना ही बंध है ये बंध शुभ और अशुभ दोनों प्रकार का होता है जब ये बंध होता है तब मैं अपने राग द्वेष करके इस बंध को निरंतर जिसका जब मुझे फल मिलता है तो उसमें फिर राग द्वेष करता हूँ और नवीन बंध के लिए प्रक्रिया बना लेता हूँ यही मेरी भूल है बंध तत्व के बारे में मैं इसको ठीक मानता हूँ राग द्वेष करने को ठीक माना था तो आश्रय भी हुआ और नए आश्रय अकेला हो गया होता तो भी गुंजाइश थी लेकिन नवीन बंध भी मैं साथ में कर रहा हूँ दोनों एक साथ होते हैं आश्रय और बंध ये मत समझिएगा कि पहले आश्रय होता फिर बंध होता दोनों एक साथ कथन भर जो है अलग करने का है पर दोनों एक साइमल्टेनियस हैं उसी समय जिस समय आश्रय होता उसी समय तो दोनों का कारण क्या है राग द्वेष से आश्रय होता है और राग द्वेष से ही बंध होता है शुभ और अशुभ फल में मैं राग द्वेष कर लेता हूँ फिर कहते हैं अब आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्ट अब जो मोक्ष का उपाय है संवर तत्व है तो संवर तत्व के बारे में मेरी अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है या मिसबिलीव क्या है मेरा संवर के बारे में मैं कर्मों का आगमन रोकता नहीं हूँ बल्कि जो कर्मों के आगमन के रोकने के उपाय हैं उनको मैं कष्टप्रद मानता हूँ इतना सा है जिन वजहों से मेरे कर्म का बंधन और आश्रय रुकता है उन कारणों को तो मैं अपने लिए विपरीत मानता हूँ या कष्टप्रद मानता हूँ देखिएगा आत्म हित हेतु विराग मुझे यहाँ पर विराग से अर्थ वीतराग से लेना भैया विराग शब्द यहाँ वीतराग के अर्थ में है वरना विराग सामान्य जो अपन ने एक बार कहा था राग विराग और वीतराग तो विराग में तो द्वेष संभव है किसी चीज से भैया हमें नहीं पसंद नहीं है इसलिए हम उससे विरक्त हो गए तो किसी चीज के पसंद नहीं होने से विरक्त होना अलग बात है और पसंद नापसंद से ऊपर उठ जाना वो वीतरागता अलग है वो यहाँ है आत्मा का हित करने वाला क्या है
वीतरागता
उस वो वीतराग जो ज्ञान है वो मुझे कष्टप्रद मालूम पड़ता है वीतराग विज्ञान मुझे कष्टप्रद मालूम पड़ता और उस जब मुझे कष्टप्रद मालूम पड़ता है तो मैं संवर नहीं करता हूँ जानता तो जरूर हूँ लेकिन उस पर विश्वास नहीं करता यहाँ पर पूरी बात विश्वास की है कि जैसा हम जान रहे हैं वैसा विश्वास करना और एक बार विश्वास कर लिया तो फिर व्यवहार बदले बिना नहीं रहता लेकिन आज जो है वर्तमान में अपन ने बहुत अलग थलग कर लिया है कई चीजों को मुझे तो नहीं अभी तक समझ में आया कि जो चीज हमने जान ली है जिसपे हमारी श्रद्धा है उससे हमारा आचरण ना बदले ऐसा हो जाए ये बात अलग है कि हम आचरण की तरह से आचरण ग्रहण करें ना करें लेकिन आचरण में परिवर्तन तो जरूर से आए देखिएगा अगर व्यक्ति का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आचरण में फर्क तो आए बिना रहेगा नहीं वो कम से कम भले ही वीतरागता अपने जीवन में ना ला पाए पर वीतरागता को अच्छा तो माने अगर उसे संवर तत्व का श्रद्धान है संवर तत्व के बारे में कोई उसको भूल नहीं है तो कम से कम वीतरागता जहां है वहां पर वो श्रद्धान तो करे लेकिन राग द्वेष करने वाला ये कहे कि मैं तो राग द्वेष तो कर रहा हूं पर मुझे वीतरागता पर श्रद्धान है तो थोड़ा सा जो है मुश्किल मालूम पड़ती है कि अभी आपको श्रद्धान या ज्ञान एकदम परफेक्ट नहीं है ये चीज जो है मैं आपको सोचने के लिए डाल रहा हूँ ताकि अपन
कोई सारी बात सुनिए महाराज जी कि अगर कोई को समय दर्शन हो गया उसने मान लिया कि ये तत्व सही है वीतरागता बिल्कुल सही
तो उसके राग द्वेष में कमी आएगी
लेकिन जब तक वो उसको फॉलो नहीं करेगा तो उसका चार्य तो नहीं बदलेगा
बदलता भी नहीं
सम्यक दर्शन होने से सब कुछ संभव
नहीं होता सब कुछ होता ही नहीं ना
तो फिर सम्यक दर्शी को आप कहते हैं कि मान लो किसी को सम्यक दर्शन हो गया ना उसको पांच गुण स्थान हो गया
नहीं चौथा
गुण स्थान हो गया तो भले वो चारित्र ना हो तो भी
हाँ चारित्र के बिना तो यह चौथा और अगर चारित्र हो गया देश चारित्र हो गया तो पांचवा हो गया और मैंने पूरे महाव्रत हो गए सकल चारित्र हो गया तो छठा सातवां गुण स्थान नहीं आप कुछ अपना प्रश्न दूसरे ढंग से पूछना चाह रहे हैं।
हमारा कहना यह था कि सम्यक दर्शन अकेला होना सब कुछ नहीं,
नहीं।
चारित्र भी
बस ये आपका प्रश्न ये ठीक है कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति तो अनिवार्य है, लेकिन सम्यक दर्शन की प्राप्ति को ही हम अपना पूरा काम न मान लें कि हमने सब कुछ कर लिया, हो गया अब सम्यक दर्शन, हो गया हमारी सच्ची श्रद्धा, हो गई हमारा काम खत्म। कहते नहीं, अभी तो शुरू हुआ, और सच्ची श्रद्धा हो गई इसलिए तो काम शुरू हो रहा है। अब तो अभी यात्रा शुरू करनी है, अभी तक तो भटक रहे थे यहाँ से वहाँ। हाँ नहीं, अभी ऐसा माने कि अभी तक तो हमें रास्ते नहीं मालूम था, भटक रहे थे, सम्यक दर्शन होने से रास्ता मालूम पड़ गया, अब चलो। अब अगर बैठे हो इसका मतलब है कि आपके प्रश्न चिन्ह लगा है। एक व्यक्ति बहुत भटकता था, जगह जगह पूछता था, मुझे फलानी जगह जाना है, रास्ता कौन सा है। लोगों ने, 10 लोगों ने बता दिया कि भैया जो है।
उसके बाद भी वो पूछे तो फिर क्या मतलब?
नहीं तो फिर उस आदमी से मालूम एक घटना है उसकी कि वो चौराहे पे खड़ा था, 10-15 लोगों से पूछ चुका कि ये रास्ता कहाँ जाता, तो सब बताते थे ये रास्ता वहां जाता था। जब एक 11वां व्यक्ति आया तो वो 10ों की सुन रहा था इसकी बातचीत, तो उससे पूछा कि भैया कहाँ जाता, कहने भैया ये बताते हैं तो जाने कहाँ। पहले ये बताओ कि तुम्हें जाना कहाँ है, तुम पूछ तो हम देख रहे हैं 10 लोगों से पूछते हुए कि ये रास्ता कहाँ जाता है, ये रास्ता कहाँ जाता, तुम पहले ये तय कर लो कि तुम्हें जाना है कि नहीं, वो कहाँ जाना है। हम ये तय करते नहीं कि हमें चलना है और हमें जाना है या अपना मार्ग तय करना है, ये हम तय नहीं करते। हम ये तय कर लेते कि मार्ग कौन सा है। चलो ये भी ठीक है कि बहुत सारे मार्ग में से हमने एक मार्ग अपने अंदर कम से कम तय तो कर लिया कि इस मार्ग पर चलना है, अब चलने की शुरुआत करो, तब शुरुआत कहलाएगी। अकेले जान लेना शुरुआत नहीं, अकेले विश्वास कर लेना कि ये रास्ता वहां जाता, मुझे बहुत विश्वास है। आप डॉक्टर हैं, पेशेंट आए और कहें आप पे बहुत विश्वास है, आपकी दवाई विश्वास है, डॉक्टर साहब बहुत विश्वास हमें, अच्छा और आपने जैसी जैसी बताई तो हमें पूरी याद है कि एक ही बात जा खाने, एक ही बात जा खाने, और खिलाने कितना करते हैं, खाई नहीं है। तो कैसे ठीक होएगा, क्या उसको, क्या वो स्वस्थ हो जाएगा? अब मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि हमें
छोटी बड़ी बीमारी हो तो अपने आप ठीक हो जाए, लेकिन बड़ी बीमारी
2-3 दिन में ये तो बड़ी है,
बड़ी बीमारी
श्रद्धा के लिए, श्रद्धा के लिए ज्ञान कितना आवश्यक है ये विचारणीय प्रश्न है। कभी कभी ऐसा लगता है कि श्रद्धा के लिए कोई ज्ञान ज्ञान की आवश्यकता नहीं, उतना ज्ञान हमारे पास प्रयोजन भूत तत्व को जानने का श्रेयोपम सब जीवों को मिला, थोड़ा सा उस तरफ रुझान होना चाहिए। तेल है, बाती है, दिया है, सब कछु है, मनो दूसरे जलत भय के लिए गानी खिसक वो चाह तब कैसे जले, सब सामान रखें वो माचिस है नहीं है अपने पास, और दूसरा सामने दिख रहा जलता हुआ दीप, लेकिन वो खिसकना पड़ेगा, वहां तक जाना पड़ेगा, और इसके लिए क्या जानकारी प्राप्त करना है, इतना ही जान लिया कि वो जलता हुआ दीप है, मेरा बुझा हुआ दीप है, मुझे उस तरफ जाना चाहिए अगर मुझे जलना है तो। बस इसी को तो कहते कि सच्चे देवगुरु शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान हो गया आप किसको, उनकी शरण में जाओ। शरण में जाने में जरा दिक्कत होती, ईगो बीच में आता है, वो आने नहीं देता, वो कहता ऐसे कैसे, और कोई विशेष मेरे ख्याल से तो ज्ञान की कोई इतनी आवश्यकता है
नहीं है, तो उनको सच्ची श्रद्धा नहीं
है।
सच्ची श्रद्धा होने के बाद तो वो जरूर सड़क के आएगा,
तो सच्ची श्रद्धा का मतलब ही है सड़क के आना,
सड़क के जरूर आएगा,
तो उसके पहले ज्ञान हो गया उसको,
सच्ची श्रद्धा है नहीं, ज्ञान
उसका ज्ञान भी सच्चा नहीं है, उसका ज्ञान भी सच्चा नहीं है अगर उसने श्रद्धा नहीं की है, किसका नहीं है, उस तरफ अपनी मान्यता नहीं छोड़ी, अपनी मान्यता नहीं छोड़ी, इसका मतलब है कि अभी उसको ज्ञान भी नहीं हुआ। श्रद्धा तो बहुत बात की चीज, तो इतना ही श्रद्धा आवश्यक, इतना ही ज्ञान आवश्यक है कि मैं जो चीज जैसी है उसे वैसा ही जानूं, और जब जान लूंगा तो फिर तो फौरन उस तरफ, मेरे ख्याल से तो बढ़ना ही जानना है, श्रद्धा करना ही जानना है। मैं इसको मैंने दूसरे तरह से एक्सप्लेन किया था कि हर आदमी कहता है कि परख लो फिर विश्वास करना, हर आदमी दूसरे से कहता है कि इसको परख लो फिर विश्वास करना, मुझे तो लगता है कि परखना भी अविश्वास करना है
ज्यादा,
हाँ ज्यादा परखना भी अविश्वास करना, कहां तक आप परखिएगा, आप विश्वास करके देखिएगा, उसके बाद आपको समझ। वो कहते हैं एक जगह और पढ़ा था मैंने कहीं कि हम ये क्यों कंफर्म करना चाह रहे हैं कि ये मार्ग सच्चा है और ये मार्ग झूठा है, कैसे कौन कंफर्म करेगा, आपने चल के देखा है क्या, आप जब तक नहीं चले तब तक कैसे कह सकते हैं कि ये मार्ग सच्चा है और ये झूठा है, दोनों पे चल के देखो फिर या तो। हैं उनको मैं कष्टप्रद मानता हूँ। क्या रे संवर, अच्छा ये बताओ संवर कैसे होता, आगे तो अपन पढ़ेंगे, अब थोड़ा सा डिटेल और कर ले, क्योंकि इसमें तो अपन ने सिर्फ ये पढ़ा कि आत्म हित हेतु विराग, वीतरागता ही संवर का मुख्य कारण है, और उस वीतरागता में क्या क्या कारण है, प्रतिपुक्ति समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय चारित्र, ये सब जो है उपाय है। अंतरंग में वीतरागता लाने का उपाय क्या है, बहिरंग में आचरण। तो पहले तो कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हुआ कि वीतरागता से ही हमारा संवर होगा, अब वीतरागता कैसे आएगी इसका मुझे वही उपाय करना पड़ेगा, मैं मुक्ति समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय और चारित्र ये अंगीकार करूं, तब जो है संवर तत्व मेरे भीतर स्पष्ट रूप से प्रकट होगा। अभी तो सिर्फ विश्वास कर लिया है, ये इसको इस तरह समझें। और आगे क्या कहते हैं, एक और छूट गया, रोके न चाह निज शक्ति कोई शिव रूप निराकुलता न जोए। इसमें दो आ गए, क्या बचा, निर्जरा और मोक्ष, एक एक चरण में एक एक। रोके न चाह निज शक्ति खोए, बस इतने से शब्द हैं निर्जरा के लिए। अपन एक्सप्लेन कर लें इसको, निर्जरा किसे कहते हैं, पार्शियल डिसइंटीग्रेशन, ग्रेजुअल डिसइंटीग्रेशन, क्रम क्रम से कर्मों का आत्मा से पृथक होना या खिल जाना झर जाना, इसका नाम निर्जरा है। और ये किस वजह से निर्जरा क्यों नहीं हो पाती है, क्योंकि मैं निरंतर इच्छावान हूँ, मैं निरंतर इच्छावान रहूंगा तो निर्जरा तो होगी नहीं। जबकि मुझे तो जैसे जैसे किसी का हिसाब चुकता करना है, भैया के 1000 रुपया लाए तो भैया चुकाओ, 10 ही 10 दियो, रोज रोज नहीं महीना भर में 10 दियो, तब तो चुकेंगे। और हम जो है चुकाते तो ढीला नहीं है, और लेते और जाते, जब तक नहीं चुक जाए तब तक मैं अपनी इच्छाएं और ना करूं। वो दुकानदार खुद कह रहा कि भैया पहले पुराना नक्की कर दो फिर लियो नाओ, लेकिन हम जो है पुराना क्लियर किए बिना नया इकट्ठा करते चले जाते हैं, तो क्या कभी निर्जरा होएगी, कहते नहीं होएगी। वही कह रहे हैं रोके न चाह, मैं जो है अपनी इच्छाओं को नहीं रोकता हूँ और अपनी शक्ति को व्यर्थ ही आश्रय और बंध में लगाता चला जाता हूँ, इसलिए निर्जरा मुझे होती नहीं। संवर ही नहीं होता है तो निर्जरा कैसे होगी, चाह रोक देना संवर है, और उसके बाद जो प्रक्रिया होती वो अपने आप निर्जरा की प्रक्रिया होती। अपनी शक्ति जो है यहाँ पर तपसा निर्जरा, तपस्या करने से निर्जरा होती है, और इच्छा निरोधा तपः, इच्छाओं का निरोध करने का नाम तप है, और तप करूंगा जब इच्छा का निरोध करूंगा तो निर्जरा होगी, लेकिन मैं इच्छाओं का निरोध नहीं करता हूँ। रोके न चाह, मैं अपनी चाहत को तो इच्छाओं को रोकता नहीं हूँ, और अपनी शक्ति को जो है व्यर्थ ही होता चला जाता हूँ, जो मुझे शक्ति तपस्या में लगानी थी वो उसमें नहीं लगा करके, और कर्मों के बंध में, अर्थात मेरा निर्जरा करने में कोई रुचि नहीं है। इन सातों तत्वों में रुचि होना चाहिए, तो मेरी रुचि निर्जरा में नहीं है, क्योंकि मैं निरंतर आकांक्षा करके नया बंध कर रहा हूँ, और शिव रूप निराकुलता, और इसी वजह से जो सुख रूप, शिव मतलब यहाँ पर सुख रूप है, जो सुख रूप है निराकुलता, आत्म को हित आगे कहेंगे, आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहेंगे, निराकुलता ही सुख है, जितनी आकुलता उतना दुख, और जितनी निराकुलता उतना सुख, और जहाँ बिल्कुल निराकुलता है वहाँ सुख ही सुख है। तो कहते हैं वो शिव रूप अर्थात सुख रूप जो निराकुलता है वो मुझे पसंद नहीं आती, इसका मतलब है मैं मुक्ति के बारे में मेरा कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। इस तरह सातों तत्वों के बारे में मेरी जो स्पष्ट प्रतीति होनी चाहिए थी, मेरा जो अनुभव, प्रतीति का मतलब अनुभव, मेरा जो अनुभव होना चाहिए था वो अनुभव नहीं है, ना मैं जीव को ठीक ठीक समझ पाता हूँ, ना अजीब को, दोनों को गड़बड़ कर देता हूँ, मुझे जिन कारणों से आश्रय होता है उन कारणों को मैं जानता हूँ लेकिन उन कारणों को मैं उपाय कुछ नहीं करता हूँ, बंध के कारणों को भी जानता हूँ लेकिन बंध से बचने का उपाय नहीं करता हूँ, शुभ और अशुभ के द्वारा बंध होता है या शुभ अशुभ के उदय में आकर के मैं जो है और नए नए कर्म बांधता चला जाता हूँ, और संवर के लिए भी मुझे जो उपाय करना चाहिए थे वीतरागता वो उपाय भी नहीं करता हूँ, और जो इच्छाएं मुझे निरंतर नए कर्म बांधने में सहयोगी होती हैं जब तक मैं उनको नहीं रोकूंगा तब तक कर्मों की निर्जरा नहीं होती, उसका उपाय भी नहीं करता हूँ, और जो मुझे सुखरूप है जो मुक्ति है निराकुलता है उस निराकुलता को भी मैं स्वीकार नहीं कर पाता हूँ। टोटल एक्सेप्टेशन पूर्ण स्वीकृति का नाम सम्यक दर्शन है, जो जैसा है उसे ठीक वैसा ही स्वीकार कर लेना, आध्यात्मिक दर्शन, और मैं सबको स्वीकार नहीं कर पाता हूँ। मान तो लेता हूँ, जान लेता हूँ, लेकिन स्वीकार नहीं करता। ये मेरा अपना मेरी अपनी गलती है, इसी गलती की वजह से मैं दुख पा रहा हूँ, भ्रमण कर रहा हूँ। क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। ये तो डिटेल है, शॉर्ट में क्या कहेंगे अपन इन सब चीजों के, लास्ट में ये सब याद नहीं रहेगा इतना सारा। ये तो डिटेल है, कितना याद रखना अपने लिए कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या आचरण ये मेरे संसार के दुख के कारण है। उसमें से मैंने कोशिश करी है कि मिथ्या दर्शन क्या चीज है। तो मिथ्या दर्शन ये है कि जो भगवान के कहे गए सात तत्व हैं, उनका जैसा स्वरूप है मैं उसको वैसा स्वीकार नहीं करता हूँ, मेरी उसमें रुचि नहीं है, इसी वजह से मेरे अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। जो चीज जैसी बताई गई है उसको आप स्वीकार नहीं करेंगे तो आप अपना कॉन्सेप्ट कभी क्लियर नहीं कर पाएंगे। जीव अजीव आश्रव बंध संवर निद्रा और मोक्ष, इन सब का स्वरूप जैसा भगवान ने कहा है वैसा स्वरूप मैं स्वीकार नहीं कर पाता हूँ, इसलिए मेरी मान्यता नहीं बदलती है, मैं ज्यों का त्यों बैठा हूँ। पिता ने कोई बात बताई, बेटे ने मानी नहीं और अपनी ही धारणा को दोहराता है, तो क्या वो अपना कल्याण कर पाएगा? जिन वाणी हमको निरंतर हमारे कल्याण की बात बताती है, हमें वो रुचती नहीं, हमें अपने कल्याण की बात नहीं रुचती, तो हम अपनी मान्यता नहीं बदलना चाहते हैं, तो फिर भ्रमण तो हो गई। इसलिए शायद इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये सारी चीजें अच्छी तरह से जान लो, अपने फॉल्ट खुद जान ले व्यक्ति तो बचने का बहुत आसान उपाय है। दूसरा किसी के फॉल्ट बताए और जब तक मैं उसको स्वीकार ना करूं तब तक मैं उनको निकालने का प्रयास ही ना करूं। हमने तो आपको फॉल्ट बता दिए कि आप एक तो पहले हम कभी मन नहीं बनाते दूसरे से अपनी गलती जानने का, बहुत मुश्किल है कि व्यक्ति मन बनाए और किन्हीं के चरणों में बैठे कि मेरी कुछ गलतियां हो तो बताइएगा, पहली बात तो ये मन बनाना पड़ता। चलो मन बना हुआ है कि बताओ अच्छा हमारी गलती, हमारा कॉन्सेप्ट कहाँ गड़बड़ है, तो बता रहे हैं कि तुम्हारा यहाँ यहाँ कॉन्सेप्ट गड़बड़ है, अब स्वीकार कर लो। अब ये स्वीकार करने में जितनी देर लग जाए उतने सम्यक दर्शन में देर है, बाकी तो जानकारी हो गई। अब कहते याही प्रतीत युत कचुक ज्ञान सो दुखदायक अज्ञान ज्ञान, और जैसा ये श्रद्धान है उस जैसी ये प्रतीति है वैसा ही अगर हमारा ज्ञान है तो वो भी जो है दुख देने वाला अज्ञान ही है, उसी को मिथ्या ज्ञान बोलते। मिथ्या ज्ञान कहो या अज्ञान कहो, हमारे यहाँ पर दोनों सिनोनिम्स हैं। एक्चुअली अज्ञान के मायने हैं ज्ञान की कमी, भैया बड़े अज्ञानी इनको जय नहीं मानो, वहाँ सामान्य रूप से ये प्रचलित है, लेकिन यहाँ है कि इनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है इस चीज के बारे में, इसलिए मिथ्या। तो कह रहे हैं कि दुखदायक जो अज्ञान है वो जैसा इनकी हमने श्रद्धा करी है वैसे ही हम उनको जानते हैं, तो हमारा ये अज्ञान है। और इन जुत विषयन में जो प्रवर्त ताको जानो मिथ्या से, और ऐसा जिसका सोच है और ऐसा ही जिसका आचरण है वही मिथ्या आचरण है। यानी कुल क्यों महत्वपूर्ण हो गया सम्यक दर्शन, या क्यों महत्वपूर्ण है इनमें से श्रद्धा, उसी से सारी चीजें। अगर मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मेरा नॉलेज क्लियर है, मेरा कॉन्सेप्ट और नॉलेज दोनों क्लियर है तो मेरा एक्शन भी क्लियर है। इस तरह ये तीनों, अच्छा लेकिन इन चीजों को हम एक्सप्लेन अलग अलग कर रहे हैं पर है तीनों एकदम जुड़ी हुई चीज है। जैसे कि तीन धागे एक साथ पकड़े हुए हैं और जरा सा इशारा करें तो तीनों में स्पंदन होता है, ठीक इसी तरह कषायों को समझना चाहिए। कषाय की डोर जो है वो लोभ है, मेन क्रोध दिखाई पड़ता है, मान दिखाई पड़ता है, माया दिखाई पड़ती, लोभ नहीं दिखाई पड़ता, और जबकि उसका मेन रूट कॉज है लोभ, लोभ से ही सारी कषायें। इसी तरह इसका रूट कॉज क्या है, हमारी कॉन्सेप्ट अनक्लियर होना, मतलब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होना, या अश्रद्धा, जैसा है वैसा नहीं समझ पाना, वैसा स्वीकार नहीं कर पाना, स्वीकार नहीं कर पाता हाँ, तो स्वीकार ये थोड़ा सा
क्लियर हो गया मेरा
स्वीकार नहीं, स्वीकार नहीं समझते भी नहीं, अगर समझ लिया होता तो जानते सब हैं, मानते सब हैं, लेकिन समझते नहीं ठीक ठीक
तीन चीज़
जानना समझना और स्वीकार करना, जान लेते हैं ठीक ठीक समझ नहीं पाते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है, क्योंकि हम ठीक ठीक जानने के बाद भी समझने के बाद भी और स्वीकार नहीं कर पाते हैं।
तो वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ये तीनों चीज होंगी, जानना समझना और स्वीकार,
ऐसा मान
लीजिए।
नॉलेज इतना ही, इसमें एक लाइन और कर लें ताकि ये क्या
एजुकेशन में बोलते हैं, नॉलेज अपना जानकारी,
इन्फॉर्मेशन
अंडरस्टैंडिंग समझना, एप्लीकेशन
एक्शन
अरे चरित्र,
ठीक अंडरस्टैंडिंग
नॉलेज
अंडरस्टैंडिंग
एप्लीकेशन,
ठीक नॉलेज के बाद अपने यहाँ पर समझ को बोला है ज्ञान, अंडरस्टैंडिंग में
तीनों हो गए,
जानना
समय ज्ञान समय
एप्लीकेशन। और लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ विशेष रूप से कि सम्यक दर्शन भी अपने आप में एप्लीकेशन है,
मानता
मैं आपको इस तरफ ले जाना चाहता हूँ। हमने इसको बहुत आसान तो लगा है कि आसान कर लिया, नॉलेज अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के मायने हम चारित्र मान रहे हैं, नहीं मैं कह रहा हूँ एप्लीकेशन के मायने हैं श्रद्धान। मैं जानता हूँ मैं समझता हूँ लेकिन स्वीकार नहीं करता हूँ, तब तक मेरा न ज्ञान ठीक है न दृष्टिकोण ठीक है न आचरण ठीक है। अभी तो ये तीनों चीजें हो गई, कंडक्ट अलग थी, एप्लीकेशन ही कहना चाहिए। कैसे एक्सप्लेन करूं, एक्चुअली सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र तीनों इतने एक लेख हैं कि एक के होने पर तीनों ही होते हैं। हाँ एकदम, इसलिए जहां एप्लीकेशन कहा वहां पर सब आ गया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र सब आ गया। ये कह लीजिए
अलग अलग नहीं कर सकते,
अलग अलग नहीं कर सकते, ऐसे डिफाइन ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते हम, या एक्सप्लेन कर भी लेंगे
एक्सप्लेन कर लेंगे
प्रैक्टिकली
वो तीनों
प्रैक्टिकली एक ही। मिथ्यात्वादि निसर्ग जे, ये निसर्ग मतलब बाई वर्थ बाई नेचर, ये मिथ्यात्व इत्यादि अर्थात मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, ये बाई वर्थ फ्रॉम वेरी बिगनिंग, जब से हम हैं तब से हमारे साथ लगे हैं। अब जे ग्रहित सुनिए सुगे सुते, अब उनके लिए मैं बताता हूँ जो मैंने एडॉप्ट किए हैं, जो मैं बाहर से बहुत सारी मान्यताओं को स्वीकार कर लिया। एक तो मेरे साथ मिथ्या मान्यता लगी थी और एक मैंने बाहर से शुरू की, वो ग्रहित मिथ्यात कहलाता है, इसको बोलते अग्रहित। तो हमने कितनी अभी जो पढ़ा है वो क्या है, अग्रहित मिथ्यात, मेरी अनादि काल की भूल, इसको अपन अपनी भाषा में क्या कहेंगे, मेरी अनादि काल की भूल मुझे जानकारी में आ गई है, समझना फिर भी बाकी और एप्लीकेशन बहुत बाकी।
इसके लिए एक्यूमुलेटेड इग्नोरेंस,
एक्यूमुलेटेड
इग्नोरेंस
मैंने इनहेरिटेड है बहुत
चली
आ हमेशा से चली
है, एक्यूमुलेटेड मीन्स
संग्रहित जैसा हो जाता है
ना, कलेक्टेड इन द सेम
संस्कारवश संग्रहित होने वाली अश्रद्धा हमेशा से जो है, क्योंकि रोज रोज नई नई जुड़ती जा रही ना उसके साथ में, इतने वर्षों से हमारी वो मान्यता मजबूत होती चली जा रही।
शब्द इसमें दो शब्दों के अर्थ, निसर्ग जी है,
निसर्ग के मतलब नेचर बाई नेचर, और जी है मतलब यह,
और सुते सुनिए सुते
उसे भली प्रकार से उसे, यह ऐसा है वह यू थिंक दैट, और कोई विशेष नहीं। दिस इज फॉल्स नॉलेज फ्रॉम वेरी बिगनिंग, और अब हम जो एक्सप्लेन करने वाले हैं दैट इज अडॉप्टेड, इतना ठीक कितने बजे अटेंड नहीं किया पहला वाला वक्त जो हम लोग कर चुके ना वो तुमने अटेंड नहीं किया। सातों तत्वों को समझने के लिए हम शॉर्ट में ऐसा कहते हैं जैसे कि हमें कोई एक चीज मैन्युफैक्चर करनी है, हमें कोई एक बढ़िया मेटल मैन्युफैक्चर करनी है, हम क्या करते हैं पहले ओर लाते हैं, रॉ मटेरियल क्या है, रॉ मटेरियल में इम्प्योरिटीज क्या है, इम्प्योरिटीज के कॉज क्या है, इन्फ्लक्स ऑफ इम्प्योरिटीज है, और फिर उसके बाद उनके बीच में जो बॉन्डेज है इम्प्योरिटीज और ओरिजिनल मैटर के बीच में वो बॉन्डेज क्या है, और स्टॉपेज क्या है जो कि नई और विकृतियां इसमें ना आए, उसको रोकने का क्या उपाय है, और डिसइंटीग्रेट कैसे करेंगे, ग्रेजुअल डिसइंटीग्रेशन कैसे करें, तो प्योर मैटर का नेचर क्या है, ये सात बातें ही तो जानते हैं। तो जो इम्प्योर मैटर है या रॉ मटेरियल है वो जीव तत्व की तरह है, उसमें जो इम्प्योरिटीज हैं वो अजीव है, और जो कॉज ऑफ इम्प्योरिटीज वो इन्फ्लक्स वो कहलाता आश्रम, और
जो उसके साथ बॉन्डेज है वो कहलाता बंद, और जो हम उस नए इम्प्योरिटीज को रोकने का उपाय करते हैं उसका नाम है संवर, और जो पुरानी इम्प्योरिटीज हैं उनको हम धीरे धीरे हटाते मेल्ट करके उसको एलाइट बनाने के लिए इम्प्योरिटीज, वो निर्द्रा कहलाती ग्रेजुअल, और जब प्योर हमारे लिए बेटर मिल जाता वो भी मोक्ष की स्थिति है इस तरह से। और ज्यादा पानी को मान लीजिएगा अजीब, और मैं हूँ जीव, मेरी नाव में बैठा हुआ हूँ, फिर क्या होता है कि उसमें छेद हो जाता है, छेद होता तो पानी आना शुरू होता, तो क्या होएगा, पानी अकेला आ नहीं रहा है, ठहर भी रहा है, क्योंकि जाने का तो कोई उपाय है नहीं, उसमें से निकलने का उपाय नहीं है, आता चला जा रहा है तो ठहर रहा है, तो जो ये आ रहा है पानी वो है आश्रय, और जो ठहर रहा है पानी वो है बंद, और मैं हूँ बुद्धिमान, तब क्या करूँ मैं, सबसे पहले पानी के आने को रोकूं तो उस छेद को बंद करूं, अच्छा तो छेद के बंद करने से काम चलेगा क्या, नहीं, अब दूसरे व्यक्ति को बिठा दूं उधर कि तू उड़ी बाहर कर उस पानी को, तो बाहर भी कैसे करेंगे, पूरी नाव तो ऐसे पलट नहीं सकते नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी, तो थोड़ा थोड़ा करके जो है उसमें से उड़ी जाएंगे, तो ये ग्रेजुअल डिसइंटीग्रेशन है, थोड़ा थोड़ा कर्मों की निंद्रा करते हैं, जब पूरी नाव अपनी फिर पानी से खाली हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, मुक्त हो गए हम, तब तक तो अपन पहुंच जाते हैं घाट पर, सब काम चलना है, उधर चेत भी बंद हो गया है, पानी उलीचना चालू है, और चप्पू चलाने वाला चप्पू चला रहा है, जब तक जो है ये काम हुआ तब तक पहुंच गया। और सरल उदाहरण बताए, मुनि महाराज जी जीव तत्व और सब जने अजीव तत्व और चौका में हो रहे आहार, आप चले जा रहे हैं, अब बहुत हो गई भीड़, तुमने कहा भैया देखो बंद करो, लोगों बहुत बहुत लोग हैं, देखो आ रहे थे और निकल जाते तो भीड़ नहीं होती, मगर आउट जा रहे हो रुक जा रहे आना तो हो गया आश्रव और रुकना हो गया बंद, वो फिर धीरे से वहां कर दिया बंद कि भैया बहुत बहुत हो गई, अब एक एक जने देखे निकलो निंद्रा हो गई, पूरे दिन नहीं निकलेंगे एक साथ भीड़ हो जाएगी, एक एक निकल गए, अब कौन बचा, हम ही बाहर निकल गए तो मुक्ति ऐसा तो रोज करते हैं अपन, ये साथ सत्य ये प्रयोजन उसी को अपने कर्मों की और उसके आत्मा की स्वरूप शिव का नमः त्रयोत्सव ठीक नहीं है, हम चीजों को सबको जानते हैं देखते हैं और
अपने आचरण में भी लाते हैं, पर हम उनको ठीक ठीक जैसी हैं वैसा नहीं सोचते हैं। जीव के बारे में हमारा क्या सोच होना चाहिए? तो जीव के बारे में हमें ये सोचना चाहिए कि ये तो ज्ञान दर्शन से युक्त है, उपयोगवान है, चैतन्य है, और मैं उसको जो है जड़ मान करके उसके साथ वैसा वो करता हूँ, बिहेवियर करता हूँ। जबकि उद्गल नव अधर्म अधर्म आकाश ये सब तो अजीब है, लेकिन जीव तो चेतनात्मक है, मैं उसको भी अचेतन की तरह ही ट्रीट करता हूँ। और अचेतन को तनुपजत अपनी उपज जान, तन्नशत आपको नाशन। और मैं शरीर की उत्पत्ति को ही जीव की उत्पत्ति मान लेता हूँ। एक दर्शन ऐसा भी है जो कहता पंचभूत तत्व मिलकर के ही जीव उत्पन्न होता है, तो अपने आप में कोई एग्जिस्ट करने वाली चीज नहीं है। तो कहते ऐसी मेरी मिथ्या मान्यता है, जीव अलग है और अजीव अलग है। ये मुझे दोनों जिसको अपन लिविंग और नॉन लिविंग बींग बोलते हैं, दोनों अलग अलग हैं। हम शरीर तो है नॉन लिविंग, शरीर तो अजीब है, उसकी उत्पत्ति को अपनी उत्पत्ति मान लेते हैं। ये हमारा अजीब तत्व के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। और जीव को मैं सुखी दुखी मान लेता हूँ, जो किसी जीव तो जो है वो सुखी दुखी होता नहीं, वो तो ज्ञाता दृष्टा है, उसका तो जानने देखने का स्वभाव है। इस तरह से मैं जीव तत्व और अजीव तत्व इन दोनों वाक्य के बारे में भ्रम में हूँ। मुझे ये समझ में आ गया। फिर मुझे दूसरी चीज समझाना चाह रहे हैं कि जो मेरे कर्म आते हैं वो क्यों आते हैं? राग द्वेष की वजह से आते हैं मेरे अंदर कर्म, और उसी राग द्वेष को मैं करता हूँ और अच्छा मानता हूँ। सबसे बड़ी चीज, राग द्वेष तो सब करते हैं, लेकिन राग द्वेष को अच्छा मानना ये तो भूल है ना। राग द्वेष अपना स्वभाव मान लेते हैं हम, तो कहते राग द्वेष को अगर अपना नेचर मानोगे तो फिर कभी बच नहीं पाओगे। तो ये कॉन्सेप्ट भी ठीक नहीं है कि राग द्वेष हमारा स्वभाव नहीं है, राग द्वेष तो आश्रयों का कारण है, उसी की वजह से मेरे कर्म आते हैं, संसार बढ़ता है। मैं ये जानूं और राग द्वेष को अच्छा नहीं मानूं। फिर जो बंध होता है वो भी इसी राग द्वेष के द्वारा होता है। शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्म मैं बांधता हूँ, और जब शुभ कर्म मेरे उदय में आते हैं तो मैं उसमें हर्ष मान लेता हूँ और संतुष्ट हो जाता हूँ। जब बुरे कर्म उदय में आते हैं तो मैं उसमें संकलेश कर लेता हूँ। तो इस तरह हर्ष और विषाद करने से मैं नए कर्म फिर से बांधता हूँ। इसका मतलब है मैं बंध के बारे में भी ठीक ठीक नहीं बांधता। तो ये मेरा बंध का कॉन्सेप्ट भी ठीक नहीं है। जब मैं जान रहा हूँ कि इस तरह से मैं बंधन में पड़ूंगा तो फिर मैं क्यों उस बंधन में को स्वीकार करता हूँ? मैं क्यों बंधन के बारे में गाफिल हूँ? ये चीज एकदम स्पष्ट इसमें समझा दी। एक एक लाइन में इन्होंने बहुत आसानी से हमारी गलती हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की। और फिर उसके बाद संवर तत्व आता है। संवर के लिए एक लाइन कह दी हुए नहीं रोके न चाह शक्ति को, ये है ना संवर के लिए। नहीं नहीं जरा आत्महित हेतु सर। संवर कैसे होगा? संवर किसे कहते हैं बता पाएंगे कोई? संवर किसे कहते हैं?
कर्मों के आने
का रुक जाना, कर्मों के आने का रुक जाना ही संवर है। इसको स्टॉपेज भी अपन कह सकते हैं। शील्ड कर दिया हमने अपने को कर्मों के आने, तो कर्मों का आना कैसे रुकेगा? जब मैं राग द्वेष कम करूंगा और वीतरागता लाऊंगा, तो मैं वीतरागता जो है जिससे मेरा हित है उसको कष्टप्रद मानता हूं। ये भी मेरा संवर तत्व के बारे में कॉन्सेप्ट गड़बड़ा गया। जिन कारणों से संवर होता है उन कारणों को मैं दुखदायी मानता हूँ, तो फिर इसका मतलब है कि मैं संवर नहीं करना चाहता, या कि संवर के बारे में मेरा आक्रोश ठीक नहीं है। तो ये भी एक भूल हमारी है। और कौन सी भूल है? तो कहते निद्रा के बारे में भी भूल है। हम जितनी इच्छाएं करेंगे उतनी ज्यादा कर्मों का बंध होगा, निद्रा तो कम ही होगी, बंध ज्यादा होगा। तो कहते रोके न चाह, मैं अपनी इच्छाओं को नहीं रोकता हूँ। इच्छाओं को रोकना ही तप है, और तप के द्वारा ही निद्रा होती है। मैं इच्छाओं को रोकने रूप तप को अच्छा नहीं मानता हूँ, और अपनी शक्ति इच्छाओं को करने में व्यक्त कर देता हूँ। मेरी शक्ति को, अपनी शक्ति को जो मुझे अपने में सीमित रखनी थी, या शक्ति को संग्रहित करना, संवर की विशेषता है कि संवर के द्वारा शक्ति संग्रहित होती है, और वो शक्ति ही हमारे भीतर निद्रा का काम करती है। जैसे एनर्जी क्रिएट हो और वो कर्मों को तोड़े, अग्नि हमारे भीतर प्रज्वलित हो और वो कचरे को जलाए, तो निद्रा तो एक तरह से कचरे को जलाना ही है। तो वो तपस्या के द्वारा जलते हैं कर्म, तो तपस्या के द्वारा जो कर्म जलते हैं वो इच्छाओं के निरोध होने पर जलते हैं, और इच्छाओं के निरोध को मैं कर ही नहीं पाता हूँ। रोके न चाह, मैं अपनी चाहतों को रोकता नहीं हूँ और अपनी शक्ति को व्यर्थ गवाता हूँ। इस तरह मैं निर्जरा तत्व के बारे में भी भूल रहा हूँ। फिर उसके बाद जो मेरा अपना स्वभाव है, शिव रूप है, सुख रूप है। मैं निराकुलता में सुख नहीं मानता हूँ, मैं आकुलता निरंतर करता हूँ और चाहता हूँ कि मुझे सुख मिले, जबकि सुख तो निराकुलता में है। वास्तव में मोक्ष का स्वरूप तो यही है। जितनी निराकुलता, आचार्य ने एक बार कहा था बहुत पहले, वो सेंटेंस मेरे लिए आज तक गूंजता है, 87 में वो मैंने पहली बार प्रवचन सुने थे आचार्य के, उसमें आखिरी दिन प्रवचन में ये था कि जितनी निराकुलता आज है उतना मोक्ष आज भी है। हम जितने निराकुल हैं उतने मुक्त हम आज भी। तो निराकुलता में सुख है, जबकि मैं निराकुलता में सुख मानता नहीं हूँ, आकुलता में सुख मानता हूँ। इस चीज की आकुलता कर लू, इस चीज को पालू। तो कहते शिव रूप निराकुलता न जोए, मैं कभी भी जो सुख रूप निराकुलता है उसके लिए प्रयास ही नहीं करता हूँ। इसका अर्थ है कि मैं अपनी मुक्ति के बारे में भी भ्रमित हूँ, मैं मुक्ति चाहता नहीं। अभी मैं पढ़ रहा था कि हम लोग बहुत सारी बातें भगवान की कही हुई जानते हैं, लेकिन इसके बाद भी हमारे जीवन में एक भी नहीं आती। और ये इससे मुझे सात तत्वों के की भूल से मुझे लग रहा है कि अगर ये भूल सुधर जाती है तो व्यक्ति चारित्रवान हुए बिना नहीं रहेगा, अकेला सम्यक दृष्टि नहीं, सम्यक चारित्री हो जाएगा। क्योंकि वो इच्छाओं को रोक रहा है, अगर तो चारित्र ही है, चारित्र के बिना इच्छाएं नहीं रुकती है, संयम के बिना इच्छा नहीं रुकती है, संयम के बिना निराकुलता नहीं रुकती है, राग द्वेष घटते नहीं है। तो इसलिए परिभाषा एक जगह लिखी है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कि राग द्वेष घटावने की श्रद्धान का नाम ही सम्यक दर्शन है, और राग द्वेष घटावने के ज्ञान का नाम ही सम्यक ज्ञान है, और राग द्वेष घटावने के आचरण का क्रिया का नाम ही सम्यक चारित्र है, और कोई अलग से चीज नहीं है। इसका मतलब है कुल सारी चीजें राग द्वेष को घटाने के लिए है। इस तरह हम सातों तत्वों के बारे में पिछले दिनों समझ चुके हैं। इन जो सात तत्व हैं, इनके बारे में मेरी भूल ही मेरे संसार भ्रमण का कारण है, पहली बात। और इन युत विषयन में जो प्रवण, और इस प्रकार के कॉन्सेप्ट के साथ, इस प्रकार के दृष्टिकोण के साथ जो मेरी विषयों में प्रवृत्ति हो रही है, विषय मतलब पांच इंद्रियों के विषय, जिनको इंद्रिया अपना सब्जेक्ट कहना चाहिए विषय को, एक्चुअली ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो अपन है, आत्मा ऑब्जेक्ट है ये सारे। तो पांचों इंद्रियों के पकड़ में आने वाले जो पदार्थ हैं, ये कहलाते हैं विषय। विषय की परिभाषा इतनी, जो इंद्रियों का के द्वारा जानने में आए वो सब विषय हैं, या जो इंद्रियों के क्या उसको शब्द
भोग,
हाँ इंद्रियों के द्वारा भोगे जाए, ये इंद्रियों के भोग पदार्थों को ही जो है विषय कहते हैं। पांचों इंद्रियों के अलग अलग भोग पदार्थ हैं, देखना पसंद करती है, कान सुनना पसंद करते, एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करते, इसलिए पांचों के पांच विषय हैं। इन विषयों में मैं प्रवृत्त हो जाता हूँ, इन लाइनों से क्या अर्थ निकालना, देखिएगा इतनी छोटी, इन जुत विषयन में जो प्रवृत्त, इस प्रकार की धारणा के साथ जो पांचों इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्त है वो जो है वो मिथ्या चारित्र। और अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है और फिर पांचों इंद्रियों के विषय में हम प्रवृत्त हैं तो वो मिथ्या चारित्र नहीं कहलाएंगे। अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर, इसीलिए कहते हैं कि जो वितराग सम्यक दृष्टि है उसकी उसके भोग भी कर्मों की निद्रा के कारण बनते हैं, क्योंकि वो पांचों इंद्रियों के पदार्थों को ग्रहण करते हुए भी नहीं ग्रहण करता। पश्यन अपि न पश्यति, भ्रूवन अपि न भ्रूयते, देखते हुए नहीं देखता, बोलते हुए नहीं बोलता, खाते हुए नहीं खाता। इसका मतलब है कि उसका भीतर में कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। अब वो मजबूरी है कि पांचों इंद्रियों के विषय बन रहे हैं, मैं क्या करूं, आंख बंद कर लूंगा, नहीं आंख बंद करने से थोड़ी होगा, आंख तो खुली है, आंख से सारी चीजें दिख रही है, लेकिन अब वो चीज नहीं है, एटीट्यूड चेंज हो गया। एटीट्यूड चेंज हो जाने से सारा कुछ बदल जाता, व्यवहार बदल जाता। वही चीज यहाँ कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं इस तरह के भ्रम के साथ पांचों इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्त होता हूँ तो ये मेरा मिथ्या चारित्र है, और यो मिथ्यात्वादी, ये इस प्रकार से हमेशा से बाई बर्थ कहना चाहिए, या कि फ्रॉम वेरी बिगनिंग जब से हम हैं तब से ये तीनों हमारे कॉन्सेप्ट में भी गड़बड़ी, हमारे नॉलेज में भी, नोइंग में भी है, और हमारे एक्शन में भी, तीनों में जो है गड़बड़ी है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने की वजह से। यही हमारी अज्ञानता में तीनों चीज शामिल कर रहे हैं, अज्ञानता में मिथ्या दर्शन भी शामिल कर रहे हैं, अज्ञानता में मिथ्या ज्ञान भी शामिल कर रहे हैं, मिथ्या चारित्र भी शामिल कर रहे हैं, सब अज्ञानता, क्योंकि एक बिगड़ा है तो सब बिगड़ गया। बहुत मीठा लड्डू है लेकिन उसमें विष जल गया है, अब बताइए क्या करिएगा, उसका कहीं अच्छा हो। तो मुंह के बारे में यही है कि सबसे खतरनाक क्यों मुंह माना गया है, क्योंकि वो पूरे उसको विषाक्त कर देता है। लड्डू हमको पूरा पैसा नहीं मिला, थोड़ा सा मिल गया तो भी ठीक है। दो दाने भी नुक्ती के मिल गए हैं पर विष नहीं है तो भी ठीक है। थोड़ा सा ज्ञान मिल गया है, थोड़ा सा दर्शन मिल गया है, थोड़ी सी अंतराय कक्षोपम होने से थोड़ा सा हमें शक्ति मिल गई है या भोग की सामग्री मिल गई, ये तो ये ज्यादा खतरनाक नहीं है। ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय कर्म खतरनाक नहीं है, घातिया कर्मों से सबसे खतरनाक मुंह है, क्योंकि लड्डू तो पूरा है पर विष मिला हमारे कहीं, पेट वेट तो भरना दूर हुआ। तो इस तरह से एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने की वजह से, हमारा एटीट्यूड ठीक नहीं होने की वजह से हम संसार में भटक रहे हैं। ये बात एकदम क्लियर हो गई। अब कहते हैं कि और क्या हमारी गड़बड़ी है जो कि हमने यहाँ संसार में आकर के और ग्रहण कर ली है। ये तो हमको कुछ चीजें हैं जो कि बाई नेचर अभी तक हमें मिली हुई थी, इनके बारे में भी हमने समझ लिया कि बाई नेचर तो हम इस तरह के ब्रह्म थे वो